चलिए किसको कहते हैं? तो भाई साहब जी आगे लिखते हैं, आश्चर्य थे पर उक्त न कोई, आश्चर्य के पश्चात कोई उक्ति, यानी उक्ति का अर्थ क्या होगा? वचन। उक्ति का अर्थ है वचन, वाणी। यानी आश्चर्य के पश्चात कोई बोलने के लिए वचन नहीं है, वाणी नहीं है। जब हम लोग किसी के कार्य करने पर उसके ऊपर अति प्रसन्न कोई होता है ना, तो क्या कहता है? वाह। उसको जब कहने के लिए उसकी स्तुति में हमारे पास कोई वचन नहीं होता ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं? वाह वाह, ऐसा कहते हैं। वाह का अर्थ है आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ है आश्चर्य के पर उक्त न, इसके पर कोई उक्ति यानी वचन नहीं है। पर उस परमात्मा को वाह कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते, अद्रवचनीय है वो, उक्ति नहीं उसने की, वो वाणी का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, ऐसा है यतः वाचा निवर्तन्ते, यतः मनो जस्मात्, जिससे, यहां से वाचो यानी जो वाणी है जो मन है निवर्तन्ते वापस आ जाते हैं, यानी कमता नहीं है ना, तो वाणी की कमता है ना मन की कमता है उसको पकड़ने की, उसको कहने की, उसको कथन करने की। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, कैसे अप्राप्य? उसको बिना कथन किए, उसको बिना जाने, जहाँ पे वाणी और मन लौट जाता है, मन में वहां जाके समाहित हो जाता है, वाणी भी हो जाती है, उसको कहते हैं परमात्मा, वो है वाहे। और गो ताम नाम, भाई साहब जी कहते हैं गो नाम किसका है? ताम का। ताम का यानी अंधेरे का, कौन सा? अज्ञान रूपी अंधेरा। वो कैसा है गो ताम नाम? कौन? अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधेरा। कैसा है? अनित। गो ताम नाम अज्ञान अनित। रू, रू नाम किसका? प्रकाश का। रू प्रकाश किया जिन चेत। तो ऐसा एक गुरबाणी ऐसी है जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, रूप पिता परमात्मा की वाणी, शब्द रूप वाणी, शब्दों ही सब ओपत हो गए, ऐसा भी कहते हैं कि ये सारी जो उत्पत्ति है ना शब्द से हुई है। कौन सा शब्द है? गीता पसाओ एको गवाओ, वो ऐसा है ओंकारश्च शब्दौ भावेतौ ब्रह्मापुरः, ऐसा भी लिखा है ओंकारश्च अथ, ओंकार और अथ शब्द, ये कहते सबसे पहले ब्रह्मा के मुख से निकले दोनों शब्द। यानी प्रणव जो है ना, ओम जो है प्रणव है, वहां से संसार की, सारे संसार की उत्पत्ति है। उसको प्रणव भी बोलते हैं, ओम भी बोलते हैं, ओंकार भी बोलते हैं, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ऐसा जो शब्द है उस शब्द की व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, वाहेगुरु गुरु ग्रंथ जी। उभयजहार उदार सबका कर जो सेव है सो उतरे भगपार। तो ऐसी अमृतमय गुरबाणी हम लोगों को श्रवण करने को प्राप्त हो रही है, और भाग्य है जिसको गुरबाणी सुनने को मिलती है। महाराज जी लिख एक वचन आया है कि गुरु का सिख जो है ना जपजी कंठ न कीन, सिख गुरु का होए गए और जपजी कंठ न कीन। गुरु का सिख कहता कि मैं गुरु का सिख हूं पर जपजी कंठ न कीन। ते कहते हैं कि जैसे जो तंदुर है ना, जो तंदुर यानी तुरख और तंदुर यानी जो चावल है ना, और जो चावल हैं जब चावल निकाल लेते हैं ना, तो जो उसके ऊपर का छिलका है ना, जैसे वह किसी काम का नहीं है तैसे सिख को चीन। उसी प्रकार जिस सिख ने जपजी साहिब कंठ नहीं ना किया, वो उस छिलके जैसा है जिसमें से चावल निकाल लिए जाते हैं। ऐसी गुरबाणी है तो जिसने उस गुरबाणी के साथ प्रेम किया है ना, गुरु हर राय महाराज जी का एक वचन लिखते हैं, भाई संतोख सिंह जी महाराज लिखते हैं कि गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी कीरतपुर में विराजमान हैं, तो उन्होंने गुरबाणी की महिमा बतलाते हुए एक वचन कहा जिसको वो अपने शब्दों में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जो सिख गुरबाणी भय करे बिन प्रयास भव सागर तरे। ये गुरु हर राय साहब महाराज जी का वचन है कि जो गुर सिख बाणी भय करे, जो गुर सिख बाणी का भय करता यानी सम्मान करता है, आदर करता है ना, जो बाणी का सत्कार करता है, बाणी को मानता है, आज्ञा मानता है, सो ऐसा जो सिख है बिन प्रयास भय सागर तरे। ऐसी बाणी है कि जो इस बाणी का सम्मान करता है, आदर करता है, प्रेम करता है, वो बिना प्रयास भाव सागर से तर जाता है। और एक वचन और कहते हैं महाराज जी, जिन भय बाणी अदब न धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। ये भी गुरु हर राय साहब का वचन है, जिन भय बाणी अदब न धारा, जिस जो कहता है मैं सिख हूं लेकिन उसने बाणी का महाराज जी की जो गुरबाणी है इसका भय, इसका अदब सम्मान नहीं किया, मन में धारण नहीं किया, जानो सो सिख नहीं हमारा, वो हमारा सिख नहीं है। अब ये विचार हम लोगों ने करना है कि हम गुरबाणी को कितना मानते हैं, हमारे पास इतना बड़ा खजाना है गुरबाणी का, कितने लोग हैं जो इस पंचायती अखाड़ा दरबला की छावनी में आए हुए हैं, उनको सोचना है सबको कि कितने गुरबाणी को मानते हो, कितने सुबह और प्रातः, कितने लोग प्रातः और संध्या समय गुरबाणी का दर्शन करने आते हैं, कितने गुरबाणी श्रवण करते हैं। हमारे को 2 दिन पहले महापुरुषों ने कहा कि लंगर की अनाउंसमेंट करो, तो हमने लंगर की अनाउंसमेंट की तो उसी समय लंगर में 500 आदमी इकट्ठा हो गया, और जहां दरबार के लिए हम दोनों टाइम अनाउंसमेंट करते हैं एक भी नहीं आता। जन्म है वाणी अदब न धारा, जो जानो सो सके नहीं हमारा, फिर बचना कहाँ जाएगा भाई। गुरबाणी से भय, गुरबाणी नाल प्रेम, गुरबाणी का अदब सम्मान करना चाहिए। ऐसी अगाध बोध वाणी है, ऐसी पवित्र वाणी जो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में महाराज जी कृपा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हुक्म देते हैं। हुक्म ना मानने वाले को क्या होता है, जो हुक्म नहीं मानता उसको दंड सहना पड़ता है, उसको दंड लगता है। महाराज जी हुक्म देते हैं अमृत वेला में, तो यदि कोई हुक्म नहीं मानता तो फिर उसको दंड सहना पड़ता है। तो हर रोज महाराज जी हुक्म देते हैं, नया हुक्म देते हैं। आज भी महाराज जी ने अमृत वेला में हुक्म दिया है, हुक्मनामा जिसको हम बोलते हैं। महाराज जी आज क्या हुक्म करते हैं, क्या आदेश देते हैं, उस पावन पवित्र जो हुक्म है, हुक्मनामा है, उस हुक्मनामे की विचार हम लोग हर रोज श्रवण करते हैं। आज का जो हुक्मनामा है वो निमाणियों के मान, नितानियों के तान, नियोतियों की ओट, न्यासियों के आश्रय, धन गुरु अमरदास महाराज जी के मुखारविंद से उच्चरित है। उस हुक्मनामे की विचार जिसके भाग्य उदय हुए हैं वो सुन सकता है, जिसके नहीं उदय हुए उसको तो नहीं कह सकते। फिर भी हम लोग तो हमारे भाग्य समझते हैं कि अच्छे हैं जिनको ऐसे महाराज जी के चरणार विंदों में बैठ करके कुछ श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब उस हुक्मनामे की व्याख्या आरंभ हो रही है। हम लोग उस हुक्मनामे की पवित्र व्याख्या विचार को श्रवण करें।
सूरत महला तीजा मेरा सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे बरमाई।
महाराज जी कृपा करते हैं गुरु अमरदास जी महाराज, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे बरमाई। यह जो पावन पवित्र उपदेश है ना, इसमें महाराज जी नाम की महात्म नाम का बताते हैं। गुरु सेवा और नाम दो चीजें, सिमरण और सेवा। महाराज जी इस हुक्मनामे के अंदर नाम की महिमा बतलाते हैं, सेवा की महिमा बतलाते हैं। तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जो गुरु चरणों की सेवा नहीं करते ना, जो गुरु को नहीं मानते, जिन गुरु गोप्या अपना ते नर बुरियारी, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानते बल्कि गुरु को गुप्त ही कर देते हैं, गुरु का नाम नहीं लेना चाहते। जिन गुरु गोप्या अपना सो भला ना ही पंच हो, ऐसा कहते हैं उनका भला नहीं होता। जो अपने गुरु को गुप्त कर देते हैं, गुरु का सम्मान नहीं करते, गुरु की आज्ञा कौन मानता है? जिसने मानी है ना, जिन्होंने गुरु की आज्ञा अपने सिर पर धारण की है, बिन सतगुर सेवे सेवा तो करते हैं लेकिन गुरु की नहीं करते। संसार के प्राणियों की सेवा करते हैं, लाभ में लोभ में लालच के वशीभूत होकर के संसार के लोगों के पीछे दौड़ते फिरते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सतगुर अपना छट के मनमुख होए बंदे दा बंदा, ऐसा कहते हैं। अपने गुरु को त्याग करके, गुरु को पीठ दिखा करके तो मनमुखों की सेवा करते हैं। संसार के प्राणी जो संसार के बंदे है ना, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जिन्होंने अपने सतगुरु को पीठ दिखाई है ना, सतगुरु की आज्ञा नहीं मानी, बहुता दुख लागा, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तो जो सेवा करते हैं ना अपने गुरु की, उनको विदाई मिलती है, उनको यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। जो बड़ों का सम्मान करते हैं, सतगुरु यानी जो बड़े हैं, तो अभिवादनशीलस्य, ऐसा भी कहते हैं शास्त्रकार, अभिवादनशीलस्य, जिनका अभिवादन सम्मान सत्कार करने का स्वभाव है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी चार चीजें बढ़ जाती है। अभिवादन शिवस्य नित्य वृद्धोप से विना, शास्त्रकार कहते हैं जो अभिवादन यानी बड़ों का सम्मान करने का जिनका स्वभाव है, नित्य वृद्धोप से विना, हर रोज उठ करके जो वृद्धों का सेवन, वृद्धों बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने बुजुर्गों को माथा टेकते हैं, कैसे कैसा आचरण करते हैं, जैसे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुर नाम ही माथा, कैसा आचरण राम जी जैसा। राम जी महाराज क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, जब रघुनाथ भगवान राम प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, अपने भाइयों को साथ में लेते तो क्या करते हैं, मात पिता गुर नाम ही माथा। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप से बिना, भगवान राम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पहले क्या करते हैं, मात पिता, पहले माता के चरणों को स्पर्श करते हैं, पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, गुर, फिर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के उनको नमस्कार करते हैं, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, अथवा जो वेद भगवान कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारे वेद का सिद्धांत है। तो कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्ध्योपसेविनः, जो हर रोज अपने बड़ों को सम्मान करते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीजें बढ़ जाती है अपने आप, कहना नहीं पड़ता। आयुर्विद्या आयुर्विद्या यशो बलम, आयु उसकी आयु बढ़ जाती है, उसको विद्या आ जाती है, उसको जस मिलता है, बलम उसको बल मिलता है, आत्मिक बल मिलता है, चार चीजें मिलती है गुरु का बड़ों का प्रजोजों का सम्मान करने से डायरेक्ट मिलती है, कहना नहीं पड़ता, इतना आचरण करने से कहते हैं चार चीजें बढ़ जाती है। बड़ों का सम्मान करने से, उनका आदर मान, उनकी सेवा सुसरा करने से चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, तो जो नहीं करते उनकी घट जाती है। बिन सतगुर सेवे बहुत दुख लागा, जो गुरु की सेवा नहीं ना करते उनको बहुत दुख सहन करना पड़ता है। सेवा की अनेक कथाएं इतिहास में आती है, जैसे भाई मांझ की साखी आती है, और जो माई सेवा बाजार जैसे बनाना और काबल वाली जो माई है उसकी भी कथा आती है, वो भी गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों में बौली साहिब की सेवा में उपस्थित रहती है। कहाँ काबल है, कहाँ गोविंदवाल साहब है, हर रोज सेवा में रहती है माता, और उसका छोटा सा बालक है जो काबल में उसके पति के पास छोड़ करके आती है, तो इधर टोकरी सिर पे रख करके सेवा करती है। कभी कभी जो बालक है उसको पालने में उसको डाल करके आती है, तो जब बालक रोता है तो जहां से टोकरी को ऐसे ऐसे हिलाती है तो वहां उसके बालक को झूठा आ जाता है। ये सेवा का फल है, उस माई के नाम से है माई सेवा बाजार अमृतसर, तो काबल वाली माई। तो भाई मांझ ने सेवा की है ना गुरु की, तो जो सेवा करने का फल क्या होगा। जब भाई मांझ ने महाराज जी को प्रसन्न किया गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में रह करके सेवा करते करते, सब कथा हमने कई बार सुनी है भाई मांझ की, तो इस कथा से क्या निकला कि उन्होंने गुरु की सेवा की है तो अंत में क्या फल मिला। महाराज जी क्या कहते हैं भाई मांझ जी को, जिसका नाम पहले भाई तीर्था है, तीर्था वो भाई मांझ, जब महाराज जी गुरु अर्जन देव जी प्रसन्न हुए हैं ना, उनको कुएं से बाहर निकाला है, कुएं में गिर गए हैं अंधेरे में अंधेरी के कारण, तो जब महाराज जी ने निकाला तो कहते हैं भाई मांझ कोई बार मांगो क्या चाहिए, कहते महाराज कुछ नहीं चाहिए। तीन बार महाराज जी ने कहा तो कहते महाराज यदि प्रसन्न हुए हो तो ऐसी कठिन परीक्षा आज के बाद किसी ने की ना करना, बस यही प्रार्थना है। तो महाराज जी कहते तथास्तु ऐसा होगा। तो फिर भी भाई मांझ को अपनी गल बकड़ी में लेते हैं महाराज जी, अपने कनावे में लेते हैं, कहते हैं मंझ प्यारा गुरु नो गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का ओहे था जग लंगन हारा। भाई मंझ तुम इतने प्यारे हो गुरु के, मंझ गुरु का आए जो भाई मंझ है गुरु का जहाज है, ओहे था जग जहाज है, ये नौका है बहुत बड़ी, बेड़ा है बहुत बड़ा, मंझ गुरु का ओहे था जग लंगन हारा, ये ऐसा जहाज है भाई मंझ कि इसके साथ जो भी इसकी संगत करेगा ना वो संसार सागर से पार हो जाएगा, ऐसा भाई मांझ। उस भाई मांझ को महाराज जी ने रिद्धि सिद्धि निधि संसार की और मुक्ति का दान दिया, और ये कहा था कि अब तुम जाकर के लंगर चलाओ और जपजी साहब का पाठ किया करो। मैंने पहले भी कहा ना, इतना महात्म है सिख गुरु का हो गया जपजी कंठ का कीर। तो ऐसी गुरबाणी है जो हमारे को बतला रही है, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। एक गुरु अमरदास महाराज जी अपना अनुभव बताते हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल किया है उन्होंने। हम सब ने इतिहास श्रवण किया है गुरु अमरदास महाराज जी का। रात्रि को भी संत जी महापुरुषों ने आपको यह कथा सुनाई थी गुरु अमरदास महाराज जी की। गुरु अमरदास महाराज जी को गुरु की जब जरूरत महसूस हुई, आवश्यकता जब पता चला कि गुरु गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, जब ऐसा ज्ञान हुआ ना कि गुरु के बिना समझ नहीं आती, गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती, गुरबिन ज्ञान नहीं होता, तो महाराज गुरु अमरदास जी गुरु चरणों में श्री खडूर साहब पहुंचे और आकर के गुरु अंगद देव महाराज जी के दर्शन किए, उनको गुरु धारण किया। तो गुरु चरणों में रह करके महाराज जी की गुरु चरणों की सेवा जिसका कोई उदाहरण कहीं मिल नहीं सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता ऐसा उदाहरण जैसा महाराज जी गुरु अमरदास जी ने अपने गुरु जी की सेवा की है ना। 12 साल गुरु अंगद देव महाराज जी का स्नान कराना अमृत वेड़ा में गंगा ब्यास नदी से जाकर के जल भर के लाना, भले कैसा भी मौसम हो गुरु सेवा की है। और गुरु सेवा का फल क्या हुआ कि अंत में गुरु ही बन गए, गुरु जैसे हो गए। गुरु की सेवा जो है ना उसके बराबर कोई भी संसार का तप नहीं है। और सेवा तपा सिर तपसार, ऐसी गुरु की सेवा है कि उसके महा उसके बराबर कोई भी संसार का तप नहीं है। गुरु अमरदास महाराज जी ने की है और करके दिखाया है। और गुरु अंगद देव महाराज जी ने भाई लहणा रूप में गुरु नानक महाराज जी की सेवा की है। गुरु अमरदास महाराज जी की सेवा गुरु रामदास महाराज जी ने की है भाई जेठा के रूप में। तो गुरु सेवा का इतना महात्म है कि जो गुरु की सेवा करते हैं ना उनको फिर संसार सागर में भटकना नहीं पड़ता। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लगे आए। गुरु की सेवा करने से क्या होता है, बिन सतगुर सेवे बहुत दुख लागा। सतगुरु की सेवा नहीं जो करते बहुत दुख लागा, उनको बहुत बड़ा जन्म मरण का दुख लगता है। तो जो करते हैं उनको क्या फल मिलता है, गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लग गया आए। जम्मण मरना मिट गया, काले का किस न बसाए। दोनों तरफ देखो आप, जो नहीं करते उनको दुख का इतना बड़ा दुख लगता है कि जो सबसे बड़ा जन्म मरण का दुख है वो उनको सहना पड़ता है। युग चारे भरमाई, उनको चार युगों में यानी बार बार जोनियों में भटकना पड़ता है, परंतु जो सेवा करते हैं सुख उपजे, उनके अंदर सुख की अनुभूति हो जाती है, सुख उपजे, सुख प्रकट हो जाता है। जो सुख उपजे वाली बात जब आती है ना तो चिंतन करना चाहिए कि सुख उपजे कहते हैं महाराज जी, सुख पैदा हो जाता है। अब पदार्थों में से सुख पैदा हो सकता है कभी, पदार्थ तो पैदा होते हैं, हमने सुने हैं सुख पैदा होता है, ये कभी सुना है किसी ने, सुख कोई उगता है क्या, सुख कोई जन्म लेता है। पदार्थ तो पैदा होते हैं, उपजते हैं पदार्थ, सुख भी कहते महाराज जी उपजे। तो उपजे का अर्थ क्या है, सुख की अनुभूति होती है उनके अंदर, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। यदि बाहर कोई देवता है तो उसकी भ्रांति है, बाहर टोले सो भ्रम भुलाई। बाहर जो देवता है ना सुख, सुख बाहर नहीं है, सुख तो अंदर अनुभूति होती है। सुख कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो आप चख सकते हो, खा सकते हो, भोग सकते हो, ऐसा नहीं है। खा नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, अनुभूति होती है सुख की। सुख को हम अनुभव कर सकते हैं, वो सुख स्वरूप हमारा अपना आत्मा है। जो वही भूमा तत् सुखम नालते सुखम अस्ति। जो भूमा है, जो व्यापक है, वह सुख स्वरूप है। अल्प जितना अल्प जनि परिच्छिन्न कार्य रूप संसार, इसमें सुख नहीं है। गुर सेवा ते सुख उपजे, गुरु की सेवा करने से सेवा का अर्थ क्या है? एक प्रत्यक्ष सेवा है जो गुरु के पास रह करके उनके चरणों की सेवा, उनके जो भी वो उनके पास कार्य हो, ये एक सेवा है। परंतु भज सेवा जाम ऐसा है, भज सेवा जाम उसी से सेवा। यानी सेवा का अर्थ है कि गुरु की आज्ञा मान करके कर्म करना। क्या कहते हैं गुरु, क्या क्या करते हैं गुरु? और सतगुर का जो सिख अखाए सो पर के उठ हर नाम त्या है। क्या है गुरु की आज्ञा? गुरु की आज्ञा है कि तू सिख कहना है, अपने आप को कहता है मैं सिख हूं, मैं गुरु का शिष्य हूं, भक्त हूं। तो तेरे को क्या करना चाहिए? तो सतगुर का जो सिख अखाए सो भर के उठ हर नाम त्या है। उद्यम करे भर के पर भाती, स्नान करे अमृत सरना है। ये है गुरु की आज्ञा। गुरु की आज्ञा मन में सह, उसको अपने अंदर धारण करे। तो गुरु की आज्ञा है कि तू अमृत वेले, अमृत वेला में उठ जाग। जो नहीं जागते उनको कठिन होता है, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानते। उद्यम करे पर के प्रभाती, जो सिख है, जो गुरु की आज्ञा मानता है उसको उद्यम करना चाहिए। स्नान करे अमृत सरना है, वो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत सरोवर में स्नान करे, या सतसंग रूपी सरोवर में स्नान करे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहद्या उठद्या हर नाम ध्यावै। दिन चढ़ जाए तो गुरबाणी गावे, नितनेम करे, बहद्या उठद्या। फिर उसके बाद अपना कार्य, बिजनेस, व्यापार, कुछ भी खेती कुछ भी करता है, बहद्या उठद्या हर नाम ध्यावै। ये गुरु की आज्ञा है। तो जो लोग गुरु की आज्ञा मान लेते हैं उनको सुख उपजे, उनके अंदर सुख की अनुभूति हो जाती है, दुख ना लग के आए उनको। दुख कभी भी नहीं, दुख नहीं लगता, दुख का स्पर्श भी नहीं होता उनको। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधी है पूर्ण सतगुरु ज्ञान। ऐसा गुरु स्वरूप, ज्ञान स्वरूप गुरु है। तो जन्मण मरना मिट गया, जो गुरु की सेवा करते हैं उनका जन्म मरण सबसे बड़ा दुख कौन है? जन्म और मरण का। जुग चारे भरमाई, बिना गुरु की सेवा से चारों जुगों में भटकना पड़ता है। तो वो सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का मिट जाता है जो गुरु की सेवा करते हैं। जो नहीं करते हैं ना गुरु की सेवा, गुरु की सेवा का हमने प्रार्थना की कि गुरु की सेवा का अर्थ है गुरु की आज्ञा मान के काम करना। आपने इतिहास श्रवण किया है ना, मूले खत्री का, मूला खत्री गुरु नानक महाराज जी की संगत करता है, लेकिन एक दिन घर में आ गया तो झूठ बोल दिया। पत्नी को कह दिया कि जब आएंगे तो उनको कहना मूला घर में नहीं है। गुरु की सेवा यानी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। बूढ़े ने अपनी पत्नी को कह दिया कि जब मेरे लिए पूछेंगे तो कह देना कि वो तो घर में नहीं है। तो गुरु की, बाबा जी, हे बाबा जी, बैठ जाओ या बाहर चले जाओ, चलो चलो बाहर जाओ, बैठो या बाहर जाओ, बाहर जाओ। ओ वहां भंडार में जाइए, जाकर के जल पानी पियो। तो खत्री कहते हैं, मूला खत्री ने जब झूठ बोला ना महाराज जी के आगे, उसके लिए एक पंक्ति भी लिखते हैं महाराज जी, नाल करारा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए, मरण ना जापे मूलिया आवे कितने थाए, उसका नाम लेकर के कहते हैं महाराज जी। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए, मरण ना जापे मूलिया, हे मूलिया तेरे को मालूम नहीं है, जो मरना है ना आवे कितने थाए, कहां मौत आ जाएगी, मौत तो आएगी। मूला झूठ बोल करके फंस गया के मूला घर में नहीं है। तो महाराज जी कहते ठीक है, घर में नहीं है तो नहीं है। गुरु नानक साहब जी ने ऐसे ही बोल दिया, उसकी पत्नी ने कहा तो घर में नहीं है, तो महाराज जी कहते घर में नहीं है तो नहीं है। उसी समय सर्प लड़ गया मूड़े को, मूड़ा मर गया। तो जो गुरु की आज्ञा नहीं मानते, फिर क्या हुआ, जो बेचारे भरमाई, भटकना पड़ा, कितने साल भटकना पड़ा। गुरु नानक महाराज जी से उसको साफ मिला और दसवें जामे में जाकर के हजूर साहब नंदेड़ में मूला वहां खरगोश बना हुआ था, वहां जाकर के गुरु ने उद्धार किया। लेकिन जुग चारे भरमाई, भटकना पड़ा, जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ा। गुर सेवा जो नहीं करते, गुरु की आज्ञा नहीं मानते, उनको कष्ट उठाना पड़ता है। बिन सतगुर सेवे बहुत दुख लागा, जो बिना गुरु की सेवन, गुरु की आज्ञा रहते हैं, उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ता है।
हम दीना तुम जुग जुग दाते, शब्द देह बुझाई।
हम दीना तुम जुग जुग दाते, प्रार्थना करते हैं महाराज। गुरु अमरदास जी कहते हैं, है गुरु राम, गुरु अंगद देव जी महाराज, है प्रभु पिता परमात्मा, हम दीन, हम तो दीन है, गरीब है, तुम जुग जुग दाते, आप तो जुगो जुगांतरों के दाते हो, एक जुग के नहीं, जुगा जुगंतर खाही खाहे, ऐसे ही आप देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर ऐसे आप दाते हो के जुगा जुगांतरा तक देते जाते हो, खा ही खा है, लेने वाला खा खा के थक जाता है, आप नहीं थकते, आप कैसे दाते हो। भोखत है जल में थल में पल में, नहीं कर्म विचार है, दीन दाल दया नित, दोखन देखत है पर देत ना हारे, ऐसे दाते हो तुम, कि तुम संसार के लोगों के दोषों को भी जानते हो, लेकिन दीन दयाल दया निधि, आप तो दीनों के दयाल हैं, हम दीन हैं, तुम दयाल हो। मोसो नहीं दीन को, तोसो नहीं दाता को, ऐसा कहते हैं, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, तेरे जैसा कोई दाता नहीं है संसार में, तो आप तो ऐसे दयालु हो, दोखन देखत है, आपको मालूम है कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। आपको मालूम है कि मेरे अंदर कितने दोष हैं, फिर भी देत ना हारे, आप देते ही जाते हो, आपका नाम ही दीन दयाल है, दीनों को दयाल कृपालता करने वाले आप हैं, रोग रुहान की रोजी ना टार है, आप ऐसे हो कि आप किसी की रोजी नहीं बंद करते, देना नहीं बंद करते। हम दीन हे प्रभु, हम दीन हैं, दीन कैसे हैं, गरीब, एक बाहर की गरीबी है, एक अंदर की गरीबी है, बाहर के गरीब नहीं है हम, बाहर तो सब कुछ हमारे को प्राप्त है, लेकिन गुरु सेवा अथवा सिमरण नहीं किया हमने, जप तप संयम धर्म ना कमाया, इसलिए दीन है। कंगाल है, हमारे अंदर भक्ति प्रेम भाव नहीं है। एक ऐसा भी है अथवा दीन यानी गरीब, कैसे गरीब है, गरीबी गदा हमारी, हमने गरीबी धारण की है, नौदित नाम गरीबी पाई, ऐसी गरीबी है हमारे अंदर, हमारे अंदर निम्रता है। सर की रेन, कहते हैं कि हम सार से अपने आप को छोटा मानते हैं, सबके चरणों की रेन मानते हैं, रेन मानते हैं, गरीब हैं, यानी हमारे अंदर आत्मिक शक्ति नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, आत्मिक बल से रहित हैं। और जाचना करते हैं, जाचक मंगे दान देह प्यारिया, जाचक मंगे नित नाम, हम तो आपसे नाम की जाचना करते हैं, गरीब हैं, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि पदार्थों की ममता शरीर की अहंता दुखी करती है, तो हम संतोष मांगते हैं आपसे, संतोष नहीं है, बिना संतोष नहीं को राज्य तृप्ति नहीं होती हमारी, हम दीन इसलिए है कि पदार्थों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, पदार्थों के लिए हरेक आदमी के हरेक के आगे हाथ फैलाते हैं, तो इसलिए गरीब हैं, क्योंकि पदार्थों की भूख इतनी है कि हरेक आदमी के आगे हाथ जोड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो इसलिए गरीब हैं। आप ऐसी कृपा करो कि हमारे को देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, नहीं तो भूखिया भूख ना उतरी जे बन्ना पुड़िया भाग, फिर भी नहीं भूख नहीं दूर होती। हम दीन हे प्रभु, हम तो दीन है, तुम कहते हो जुग जुग दाते, जुगो जुगांतरों में देते रहते हो, आगे हो। और क्या कहते हैं, हम दीन तुम जुग जुग दाते, क्या करो सब दे देह बुझाई, कहते हैं सब दे देह बुझाई, आप हमारी जो दीनता है ना, कंगालता है ना, जो अज्ञान के द्वारा पदार्थों की तृष्णा है हमारे अंदर, वासना है, इच्छा है, इच्छावा, वही हमारी दीनता है, उसको आप उस दीनता को दूर कर दो। कैसे, शब्द, शब्द के द्वारा, शब्द पहले भी हमने कहा कि शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती, शब्द क्या चीज है, यानी यहां हमें इतना ही समझ ले कि शब्द अपना उपदेश रूपी शब्द हमारे को दो, शब्द देह बुझाई, शब्द दो हमारे को, हम शब्द की आराधना करके तो इस दीनता की निवृत्ति कर सके, शब्द देह बुझाई, शब्द के द्वारा बुझाई यानी मेरे को समझा दो, जना दो, देही ऐसा भी अर्थ हो जाता है, देही। एक और पंक्ति आपने श्रवण की है ना, बुरा एक देह बुझाई, अब जहां कहते हैं कि शब्द देह बुझाई, वहां कहते हैं बुरा एक देह बुझाई, वहां भी यही शब्द है, वहां कहते हैं गुरु ने कृपा कर दी है, यहां कहते हैं कृपा कर दो, शब्द के द्वारा मेरे को समझा दो, वहां कहते हैं समझा दिया है गुरु ने, वहां भी ऐसा अर्थ लगा लो, बुरा सावधान यानी गुरु को आवाज मार के कहते हैं गुरु जी एक देह बुझाई, मेरे को समझा दो, जा कहते गुरु ने कृपा की है, बुझाई समझा दिया है, क्या देह, देह का अर्थ शरीर भी है, यदि देही लाएंगे तो फिर आत्मा भी है, देहीवान जो है उसको देही कहते, देहवान, पूरा एक देह बुझाई, या तो कह दिए गुरु ने बुझा दिया है, देह के बारे में या देही के बारे में, तो कह रहे हैं जहां कि मेरे को शब्द देह बुझाई, मेरे को शब्द से समझा दीजिए, क्योंकि ये शब्द का ही सब पसारा है, हमने पहले भी कहा था। तो उपदेश रूपी शब्द उसके द्वारा मेरे को बुझा दीजिए, समझा दीजिए।
हर जियो कृपा करो तुम प्यारे,
हर जियो हे प्रभु जियो कृपा करो तुम प्यारे, प्यारा शब्द भी बहुत गहरा है। तुम किसको बोला जाता है? तुम संसार में आप बोलते हो ना एक दूसरे को, तुम नहीं, हर एक आदमी को आप तू करके नहीं बुलाते, हम लोग भी नहीं बुलाते, तू करके यदि बुलाते हैं तो लगता है इसको बोलना नहीं आता। हम लोग कहते हैं आप, तुम नहीं कहते, तुम किसको कहते हो? जो आपके अति प्यारा होता है उसको तू कह करके हम बुला लेते हैं, जो अति प्यारा होता है तुम प्यारे। यहां महाराज जी तुम कह रहे हैं, जिसके साथ बिल्कुल एकता होती है ना उसको हम तू कह करके बुलाते हैं, जो थोड़ा सा हमारे पास में नहीं होता उसको हम आप कह करके, आप कहां से आए, आप कहां जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा बिल्कुल निकट वाला मित्र होता उसको तुम कहां से आए हो, तुम कहां जा रहे हो, ऐसा कहते हैं। महाराज जी कहते हैं प्रभु को बेनती करते, तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। तो कितना अभेद, कितनी निकटता है, कितना प्रेम है, साथ में प्यारे भी कहते हैं। अब प्यारा शब्द प्रयोग होता है बहुत जगह, प्यारा शब्द प्यारे का अर्थ होता है प्रिय। तो जो प्रिय की व्याख्या करते हैं तो लंबी हो जाती है। प्रिय, एक प्रिय होता है, एक प्रियतर होता है, एक प्रियतम होता है, लेकिन वो व्याख्या हमारे समझ में नहीं आएगी। महाराज जी कहते हैं हर जियो कृपा करो हो तुम प्यारे, हे मेरे प्यारे प्रभु जियो आप कृपा करो, मेहर करो, दया करो।
सतगुरु दाता मेरे में लाभो, हर नाम देवो आधारे।
सतगुरु दाता मेर में लाभो, हे गुरु हे प्रभु कृपा करो सतगुरु दाता। जो सतगुरु है, जो दाता है, सतगुरु भी है दाता भी है। सतगुरु का एक विशेषण है वह दाता है। संसार के जो दाते हैं ना वो केवल दाते हैं, उनको दानी जी आप कह सकते हैं, सतगुरु नहीं कह सकते। जैसे हम लोगों ने इतिहास श्रवण किया है ना, एक छेवे पातशाह महाराज जहांगीर के साथ जा रहे हैं रास्ते में, तो एक जगह महाराज जी रुके हैं रात्रि को, तो जहांगीर भी है और महाराज जी भी हैं। एक घास खोदने वाला बेचने वाला आया, वो कहता कि मैं सच्चे पातशाह के दर्शन करने हैं। तो कहते सच्चे पातशाह संसार बादशाह सच्चे पातशाह नहीं हो सकता, छोड़ो इतिहास लंबा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बादशाह के पास गया था, उसने उसको एक टका माथा टेक करके कहा था, वो कहते कि मैं सच्चे पातशाह नहीं हूँ, बादशाह तो हूँ लेकिन मैं सच्चे पातशाह नहीं हूँ। संसार के लोग दाता तो बन सकते हैं लेकिन सतगुरु नहीं बन सकते। सतगुरु कौन है? सतपुरख जिन जाने, सतगुरु किसका नाम उसको कहते हैं, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुरु कही है, ऐसा जिस मिले मन होए आनंद। संसार के दाते से आपको माया मिल सकती है, पदार्थ मिल सकते हैं, पर आनंद नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता, सदीवी सुख मुक्ति का सुख आत्मिक सुख नहीं मिलता। जैसे मिलिए मन होए आनंद, जिसको मिलने से स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, दर्शन पर से है गुरु के, जन्म मरण दुख जाए उसको कहते हैं सदगुरु। जिसका दर्शन, जिसका दर्शन परसन हर्षन सरसन जिसको मिल जाए ना, तो उसके मिलने से क्या था, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण का दुख नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं जिस मिले मन होए आनंद। सो सतगुरु कही है, उसको कहते हैं सतगुरु। क्या फल मिलता है, एक तो आनंद मिलता है, और आनंद कब मिलता है, मन की दुविधा बिंस जाए, क्योंकि आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। सभी लोग कहते हैं बड़ा आनंद है, अच्छा भोजन मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, कहते आज तो बहुत आनंद है। किसी को खाने में आनंद है, किसी को भोगने में, विषय में आनंद है। आनंद आनंद सब को है, सारा संसार कहता है, जिसको भी पूछो कहते बड़ा आनंद है। पर महाराज के आनंद गुरु ते जानिया, बिना गुरु के आनंद नहीं मिलता। वो संसार का आनंद जो थोड़ी देर का आनंद है वो मिलता है, जो असली आनंद है ना वो नहीं मिलता। जानिया आनंद सदा गुरते, जानिया आनंद सदा, जो सदा रहने वाला आनंद है, हरेक समय जरे जरे में जो जिस आनंद की अनुभूति होती है वो गुरु से मिलता है। जानिया आनंद सदा गुरते, जो सदैव वाला आनंद है वो गुरु से मिलता है। जैसे मिले मन होए आनंद, सो सतगुरु कही है, उसको सतगुरु कहते हैं। क्या करते हैं गुरु, मन की दुविधा बिंस जाए। आनंद की अनुभूति तब होती है जब मन के अंदर जो द्वैत है ना बिंस जाए। वो कहां से मिटती है, बड़ा लंबा एक व्याख्यान किया है महाराज जी ने इस द्वैत के बारे में। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, किसको मारे, दुविधा को। जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे सो होवे गति, जो इस मारे तिसकी होवे गति, तिस होवे गति मुक्ति। ऐसा कोई के दुर्दा मार्ग वाले, महाराज जी कहते हैं ऐसा कोई है जो इस दुर्दा को मार सके, निवृत्ति कर सके। ऐसा कोई के दुर्दा मार्ग वाले, इसे मार राजयोग कमावे। ऐसी है द्वैत कि जो इसको मार लेता और राजा योगी हो जाता है। उस शब्द के अंत में क्या कहते हैं महाराज, और दुविधा जाती है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। क्या किया गोर, यहां पर विश्राम लगता है, गोर दुविधा जाती है मारी, जिसकी दुविधा का गुरु ने निवारण नाश किया है, निवृत्ति की है। कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, वो ब्रह्म का विचार करने के योग्य हो जाता है। मन की दुविधा बिंस जाए, ये ऐसी द्वैत है गुरु को मिलने से, दर्शन करने से, उनकी सेवा करने से नष्ट हो जाती है। दुविधा का अर्थ है द्वैत की अत्यंतक, दुख की अत्यंतक निवृत्ति। ऐसा शब्द नहीं है केवल कि दुविधा नाश हो गई, उसके पीछे बड़ा रहस्य है। वो तो महाराज जी महामुक्ति का लक्षण करते हैं एक पंक्ति में, आदि पंक्ति में क्या है, दुख की अत्यंतक निवृत्ति, मन की दुविधा बिंस जाए। दूसरी आदि पंक्ति में क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति हर परम पद लही है। उसमें कहते हैं महाराज, तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत्। हर रोज पंक्ति बोलते हैं हम रोज, कि वो गुरु के पास जाने से क्या होता, तत्व ज्ञान की जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिस मिले मन होए आनंद, वो कौन सा आनंद है, तत्व का आनंद, अपने आत्मिक स्वरूप का सुख वो मिलता है। मन की दुविधा बिन सजाए, दुविधा बिन वह राग न हो वही, हर नाम नवसे मन आए। ये कैसी दुविधा है इन दुविधा घर बहुते गाले, कैसी दुविधा है कैसी द्वैत है बहुते घर गाले। इसने बहुत घरों को फाड़ दिया नाश कर दिया इन दुविधा घर बहुते गाले। ये ऐसी दुविधा है ऐसी द्वैत है इसने शरीर रूपी कई घर जो है नाश कर दिए। तो महाराज जी कहते हैं कि जहां सतगुरु दाता जो दाता भी है संसारिक सुख भी देता है आत्मिक सुख भी देता है और कौन है सतगुरु। और सतगुरु का विशेषण है दाता भी है सतगुरु भी है। सतगुरु दाता मेल मिलाव हो उस दाता का मेरे को मिलाप करा दो हे प्रभु। जो दानी रूप दाता है कैसा है कोई शंका करने की जरूरत ही नहीं पड़ती पूछना नहीं पड़ता। दाता भी है और सतगुरु भी है कौन है कनकीधर महाराज गुरु गोविंद सिंह महाराज का उदाहरण है कि नहीं। दानी उनके जैसा संसार में नहीं मिलेगा। अपना सर्वंश दान करते हैं और दाते हैं दाते हैं कि नहीं। जो भी उनके चरणों में आया है उसको मुक्ति का दान देते हैं जो भी आ जाता है उसको मुक्त कर देते हैं ऐसे हैं। इसलिए उनके बारे में कहना पड़ा भाई मूर्त न होती जो पे करना निधान की ऐसे हैं वो। उनकी उदाहरण ले लो आप भी वो दाता भी हैं और सतगुरु भी हैं दोनों काम करते हैं। जो सतगुरु करता है वो भी करते हैं तत्व ज्ञान भी देते हैं और दान भी देते हैं यानी संसार की रिद्धि सिद्धि रिद्धि भी देते हैं और मुक्ति का दान भी देते हैं। सतगुर दाता मेल मिलाव हो क्यों किस लिए मेरे को ऐसे दाता चाहिए। हर नाम देव हो आधारे जो नाम इस संसार का आधार है अधिष्ठान है जिस नाम के आश्रित ये संसार खड़ा है यानी प्रकाशित हो रहा है ऐसा दाता नाम देने वाला जो गुरु है ना सतगुरु वह मेरे को मिला दीजिए।
राव मानसा मारे दुविधा सहज समाणी पाया नाम पारा।
रहा हो विश्राम देते हैं महाराज जी और विश्राम के बाद मनसा मार दुविधा सहज समाणी जब गुरु के चरणों में आ जाते हैं ना गुरु का मिलाप हो जाता है ना तो फिर क्या फल मिलता है मनसा मार। जो मनसा मनसा यानी बुद्धि तो मनसा मार जो गुरु के चरणों में जाते ना उनकी मनसा यानी जो बुद्धि है ना उस बुद्धि में रहने वाली क्या है वासना। बुद्धि के अंदर वासना है ना सुख वित्त ये वासना है पुत्र की वासना धन की वासना संसार की वासना देह वासना शास्त्र वासना कीर्ति की वासना कितनी वासनाएं हैं। ये सारी जो वासना है ना बुद्धि के अंदर वो गुरु के पास जब जाते हैं तो वासना खत्म हो जाती है। जब तक बुद्धि है तब तक वासना रहेगी। जैसे जब हम गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो वहां पर कोई वासना का ख्याल नहीं रहता हम लोगों को पता भी नहीं रहता कि हम पड़े कहाँ हैं। और वासना तो सुनवा ये भी नहीं पता लगता कि कहाँ पड़े हैं। उठ करके कहते हैं कि इतनी नींद आई पता ही नहीं चला कहाँ पड़े हैं। जैसे वहां पर वासना तो है लेकिन कहाँ गई वासना। वासना जिसमें थी बुद्धि में अंतःकरण में अंतःकरण में लीन हो गया इसलिए पता नहीं चला। जागृत में आते हैं तो अंतःकरण से कनेक्ट होता है फिर वासना खड़ी हो जाती। तो जब तक बुद्धि है ना हमारी जानो अहम बुद्ध जब तक अहम बुद्धि है तब तक संसारिक वासनाएं हमारे को परेशान करती है, मनसा मार। जब गुरु के पास जाते हैं तो बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, अंतःकरण ही मलिन हो जाता है, देहा अध्यास जो है ना खत्म हो जाता है। मनसा मार हमारे अंतःकरण में है वासनाएं, देह का जो अहम बुद्धि के अंदर है, अंतःकरण के अंदर है, मन के अंदर है, अंतःकरण चतुष्टय के अंदर देह का अध्यास जो है अनुभव होता है, इस बाहर वाले शरीर का और सूक्ष्म शरीर का जो अध्यास भ्रांति भ्रम है ना वो अंतःकरण में है। तो जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु लोग युक्ति बताते हैं, तो जो हमारी विषय के आकार वाली बुद्धि है जिसमें विषयों का आकार विषयों के संस्कार है ना वो नष्ट हो जाती है। कौन सी बुद्धि मिलती है? विवेक बुद्ध सतगुरु ते पाई। बार बार सतगुरु की बात करते हैं महाराज, सतगुरु दाता मेल मिलावो, क्या होता है उसके मेल से? विवेक बुद्ध सतगुरु ते पाई। उस गुरु से क्या होता है? विवेक बुद्धि मिलती है। पहले विवेक वाली बुद्धि नहीं थी, अब विवेक की बुद्धि, अज्ञानी बुद्धि, वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है गुरु के मिलने से। और बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु के बगैर अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। गुरु से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती। ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान रूपी अंजन, ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़या ताको सर्प प्रकाशा। ज्ञान अंजन जो ज्ञान रूपी सुरमा है जा की नेत्री पड़या पै गया पड़ गया, जिन्हों के नेत्रों कौन से नेत्र बाहर वाले नहीं मन और बुद्धि रूपी नेत्रों में, उनको साफ करने का तरीका ही एक है, भय किया देह सुलाइया नैणी भाव का कर सिगारो ता सुहागण जान गए लागी जा सब धरे प्यारो। कहते हैं गुरु ने क्या किया? मनसा मार, जो हमारी बुद्धि है उसको मार दिया है, खत्म कर दिया है। कौन सी बुद्धि? विषय का चिंतन करने वाली बुद्धि। कौन सी बुद्धि दी है? विवेक बुद्ध, विवेक वाली बुद्धि। अब विवेक की बुद्धि को भेदन कर दिया, नष्ट कर दिया है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं गुर की मत तू ले आने भक्त बिना और डूबे सियाने। तो गुरु की मत ले, कौन है गुरु की? कौन सी मत है? विवेक बुद्ध, और गुरु से मिलती है। कबीर जी महाराज अपना उदाहरण देते हैं कि मैं जब गुरु के पास गया तो गुरु ने क्या किया? जो मेरी बुद्धि संसार का चिंतन करने वाली थी ना, गुरु ने उस बुद्धि का हरण कर लिया। कहो कबीर बुद्ध हर नहीं मेरी। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि मेरी बुद्धि मेरे को परेशान करती संसार का, बुद्धि करते अंतःकरण। तो गुरु ने क्या किया? बुद्ध हर नहीं मेरी, वो जो विषय का चिंतन करने वाली बुद्धि हर नहीं। तो कौन सी बुद्धि दे रही है? कहो कबीर बुद्ध हर नहीं मेरी। जब विवेक बुद्धि दी तो क्या हुआ? बुद्ध बदली सिद्ध पाई। हुआ तो कुछ भी नहीं, गुरु ने एक चिंतन करने का तरीका बताया, महावाक्य का तत्व चिंतन करने का तरीका बताया, तो क्या हुआ? बुद्ध बदली, बुद्धि बदली और कुछ नहीं हुआ। मैं तो वैसे का वैसा भी हूं, जो ब्रह्म ज्ञानी है महात्मा है उनका भी शरीर हमारे जैसा ही है। हुआ थोड़ी है कुछ, क्या हुआ? बुद्ध बदली, केवल बुद्धि बदल गई और कुछ नहीं हुआ। बुद्धि कैसे बदली है? बोले आ रब दा की कोणा इधरों पुटना ते इधर लौना, कुछ नहीं होया। वही कहते हैं कबीर जी के बुद्ध बदली, मेरी बुद्धि बदल गई है। और सूती ते श्रेष्ठ आई रे, बदल गई है, पहले चिंतन करती थी संसार का, अब कहते श्रेष्ठ हो गई है, सिद्धि हो गई है, बुद्ध बदली। इतना ही कार्य हुआ, बुद्ध बदली सिद्ध पाई, बुद्धि बदल गई। यानी बुद्धि जो आत्मा जो विषय का चिंतन करती थी ना, ब्रह्मकार हो गई, ब्रह्म का चिंतन करने लग गई। तो ब्रह्म का चिंतन करते करते क्या हुआ, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, क्या हुआ, गुरु मिल गए तो उल्टा राम जब तक जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, कुछ भी नहीं हुआ, बुद्ध बदली, बुद्धि बदल गई, संसार का चिंतन छोड़ करके निरंकार का चिंतन किया। तो करते करते क्या हुआ, तू तू करता हूँ तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखा तब तू, तू तू करता तू हुआ, बुद्ध बदल गई। तो मनसा मार, गुरु ने मनसा का वासना वाली बुद्धि, जो देह वासना, शास्त्र वासना, पुत्र की, संसार की, धन की, जितनी वासनाएं है, उन वासनाओं का कारण ही खत्म कर दिया बुद्धि, अंतःकरण। तो तुमदा जो द्वैत है, द्वैत के कारण ही वासनाओं का उदय होता है, द्वैत का नाश हो गया। दुविधा मनसा मार, दुविधा, जब दुविधा कहां चलेगी, सहज समाणी, दुविधा की, द्वैत की निवृत्ति हुई। एक कहते हैं वेद भगवान, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, कितनी बात है, ज्ञाते ज्ञात होने पर, साक्षात होने पर द्वैतम न विद्यते, द्वैत नहीं रहती, केवल जब तक नहीं जाना तब तक है। तो कहते हैं सहज समाणी, जो बुद्धि थी वो सहज में चलेगी, ज्ञान रूप हो गई, ज्ञान में समाहित हो गई, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया। तो फिर क्या होया, पाया नाम अपारा, फिर जो नाम है पारावार से रहित है परमात्मा, उसके नाम की प्राप्ति हो गई।
हर रस चाख मन निर्मल हुआ, केल वेख काटन हारा।
जब गुरु से नाम मिल गया तो उस नाम का चिंतन किया, नाम का चिंतन करने में पूरी विधि आ जाती है, केवल नाम उच्चारण करने की बात नहीं है। हर रस चाख, उस नाम का अभ्यास किया इतना कि उसमें से रस आने लगा, हर रस चाख, उस रस को चखा है हमने। किसी चीज को ले लेना अलग चीज है, उसका रस लेना अलग चीज है। ओ हर रस चाख मन निर्मल हुआ, मन जो है उसको निर्मल करने का, मन का अर्थ भी अंतःकरण है। मन को निर्मल कब कर सकते हैं, जब हरि के नाम का रस उसमें आता है, जब वो चखता है, वो कब आएगा, ए रस छाटे ओ रस आवा। ये संसार के जो रस है ना, जब तक ये नहीं छोड़ते, नाम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और। क्योंकि जब तक नाम रस को हम नहीं ना पीते, जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। हर रस चाख हरि के नाम का रस हमने चखा है। गुरु महाराज जी कहते हैं, जे को खावे जे को फूंचे इसका होए उधार हो। वस्तु तो पड़ी है, कहते थाल भी हमारे पास है, एक गुरु ग्रंथ साहब रूपी थाल है, थाले विच तै वस्तु पहियो, हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ति है। थाल विच तीन वस्तु पहियो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का सब कुछ पड़ा है। पर कहते उद्धार किसका हुआ, जे को खावे जे को फुंचे उसका। तो हर रस चाख हरि के नाम का जो रस है उसको हमने आस्वादन उसका अनुभव किया है। यह रस छाटे ओह रस आवा, ओह रस आवा, यह रस नहीं भावा, फिर यह संसार के रस अच्छे नहीं लगते। ये बहुत प्रकार के रस है ना, इसको चखने में हमारे को बहुत अच्छा लगता है। किसलिए ये संसार के रसों को खाते हैं? कि तृप्ति हो जाए। एक रस खाया उसके बाद फिर वही हाल, दूसरा खाया फिर वही हाल। ये रस ना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए। तू संसार के रस जितना चिर तेरे को जरूरत है तू खा ले, उसको रस को ले ले, पर तेरी प्यास ना जाए। गुरु अमरदास महाराज आज कहते हैं ना हर रस चाट, वही गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ए रसना तू अनरस राज रही, ऐ मेरी रसना तू संसार के रसों में लिप्त है। अनरस अन्य रस उस परमात्मा के नाम के बगैर जो दूसरे रस है उसमें तो रची हुई है, तेरी प्यास ना जाए। अपने रसना को सावधान करके कहते हैं कि तेरी प्यास नहीं जा सकती, प्यास ना जाए। हो अर्थ कित एक रस की बात नहीं कहते, कहीं भी तू घूम ले किसी पदार्थ का रस ले ले, प्यास ना जाए। हो अर्थ कित जिंचर हर रस पल्ले ना पाए, हर रस चाख। इसलिए कहते हैं कि जिंचर हर रस पल्ले ना पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस। कहते यदि तेरे पल्ले में हर रस आ जाए ना तो पिए। अब जानते तो हम भी है लेकिन पीते नहीं है। हर रस पाए पल्ले, हमारे पल्ले में भी है, यदि के हमारे पास रस नहीं है, रस तो है लेकिन कहते हैं जब तक तू अनरस राच रही है ना तब तक नहीं, यानी दूसरे रसों को छोड़ दे। कहते हैं कि जब तक तू दूसरे रसों में है तो इसका रस नहीं आएगा, जब आ जाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस, जब तू हर रस पी लिया ना बहुत नफस ना लग आए। ये उद्घोष है महाराज जी का, निर्णय है कि हरि के नाम का रस जिसने ले लिया ना बहुत न तृष्णा लग गए आए, उसको कभी भी तृष्णा नहीं, मनसा वार उसकी मनसा मर जाती है। बहुत न तृष्णा लग गए आए, परंतु एक शर्त है ना, एहो हर रस कर्मी पाई है। हरेक को थोड़ी मिलता है, कर्मी पाई है जिसके ऊपर कृपा होती है परमात्मा की, एहो हर रस कर्मी पाई है। और कर्मी का अर्थ है कि कृपा, जहां कहते भाग्य से मिलता है कर्म, एहो हर रस कर्मी पाई है। एक और शर्त है, एहो हर रस कर्मी पाई है सतगुरु मिला जिस आए, बिना सतगुरु के नहीं, एहो हर रस कर्मी पाई है सतगुरु मिला जिस आए। कह नानक होर अनरस सब बिसरे, जा हर रस मन आए। इसलिए कहते हर रस चाख, तू हरि के नाम का रस जब चखेगा ना तो फिर क्या होगा, मन निर्मल होगा। तेरे अंदर जो रसों के संस्कार है ना, पदार्थों के भोगों की वासना है, जब निकल जाएगी तो मन निर्मल होगा, तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हर रस चाख मन निर्मल होगा, किलबिक काटनहारा, कैसा है वो हरि का नाम का रस, किलबिक काटनहारा। संसारक जन्म जन्मांतरों की वासना के संस्कार जो है ना, पापों के काटनहारा, उनकी निवृत्ति करने वाला है।
शब्द मरहु पर जीव साधहि, ता फिर मरण ना होई।
शब्द मरहु, मरने से सब लोग डरते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सारा संसार जीव्या लोड़े सब कोई, मरने ते सब जगत डरे, सारा संसार डरता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। तो कहते हैं यदि मरना नहीं चाहते हो तो हम आपको बताते हैं कि जो आप लोग मरना समझते हो मरना नहीं है, प्राण वियोग नहीं मरना होता, प्राणों का वियोग ही मरना है ना। संसारिक दृष्टि में है ही ऐसा, प्राण का वियोग होना शरीर के, ये मौत है, मृत्यु है। ये जो मरना है इसको कोई रोक नहीं सकता, प्राण वियोग वाला मरना तो होता ही रहेगा। इससे डरोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। जो कबीर साहब कहते जिस मरण ते जग डरे, ये प्राण वियोग वाले मरने से संसार डरता है, परंतु मेरे मन आनंद, मेरे मन में बहुत आनंद हो गया है। क्यों? शब्द मर हो, वो कैसे मरे हैं? मरण मन माने, कहते हमारा मन तो मरने के लिए प्रसन्न हो गया है। ऐसे मरो जे बहुर न मरना, इस प्रकार मरो कि दोबारा मरना ना पड़े। तो क्या है ऐसा मरना जिसके मरने के बाद मरना नहीं पड़ता? शब्द मर हो, कहते हैं शब्द के द्वारा मर जाइए। जब शब्द के द्वारा मर जाओगे ना, शब्द से कैसे मरना होता है? शब्द यानी उपदेश, गुरमंत्र। जब आप शब्द के द्वारा अपने अहम भाव को मार देंगे ना, शब्द का अर्थ है कि उपदेश, सत शास्त्र का उपदेश, तत्व का उपदेश। जब उस तत्व के उपदेश का आप चिंतन करते हैं ना, उसके द्वारा आपका अहम, आपका अध्यास, उस शब्द से ही बहुत बड़ी चिंतन की विधि है, प्रक्रिया है। शब्द का अर्थ है कि शास्त्र के द्वारा जो सिद्धांत है उसका श्रवण करके, उसका मनन निधिध्यासन करके, तत्व का संशोधन करके जब मरो, जब इस देह अध्यास को मार दोगे ना एक बार, तो फिर क्या होएगा? सदा ही जीवो, फिर मरना नहीं होगा। एक बार देह अध्यास को गुरु के शब्द के द्वारा मरो, मार दो, फिर सदा ही जीवो, फिर नहीं मरना होगा कभी भी। शब्द मरो हो फिर जीवो सदा ही, ता फिर मरण ना होई। फिर बार बार जो आप मृत्यु से डरते हो ना, मरना तो पड़ेगा, लेकिन जब इस प्रकार मर जाओगे फिर मरण ना होई, यानी फिर आपको देह के साथ जो अध्यास है जब खत्म हो जाएगा ना, तो देह वाला जो प्राण वियोग वाला मरना है ना, फिर मरण ना होई, बार बार नहीं होगा।
अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्द पावे कोई।
अमृत नाम सदा मन मीठा, वो जो इस प्रकार जो मर जाते हैं ना, जो शब्द के द्वारा समझ जाते हैं ना मरने का सिद्धांत, उनको क्या होता है? अमृत नाम सदा मन मीठा। जो प्रभु का मृत्यु से रहत वरने करने वाला नाम है ना, उपदेश है, शब्द है, वो सदा मन मीठा, उनको मीठा लगता है। सब्बे वस्तु कौड़िया सत्य नाम मीठा, उनको ऐसा मीठा लगता है कि उनकी दृष्टि में संसार की सभी जो वस्तु है ना, सब कौड़ी लगती है उनको। साध आया तिनी हरजना चक साथ ही डिठा, उनको स्वाद आ गया है। वो अमृत नाम कहाँ है, कहाँ से मिलता है? घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना आया, कहीं बाहर नहीं है। अमृत नाम सदा मन कहाँ है? वो घर ही में है, अमृत भरपूर है, मन में ही है, अंतःकरण में ही है। वो जो अमृत नाम है घर ही में है, भरपूर है कते परिपूर्ण है तेरे अंतर, परंतु उसमें रुकावट प्रतिबंध क्या है? मन भुक्खा साथ ना आया। उस अमृत नाम का मन लोग जो है उनको स्वाद नहीं आता। उनकी हालत क्या होती है? जो कस्तूरी मृग न जाने ब्रह्म दा ब्रह्म भुलाया। जो कस्तूरी मृग न जाने, कस्तूरी तो मृग के सिर पर है या उसके अंदर है, मृग न जाने, परंतु उसको मालूम नहीं हो कहाँ ढूंढता है, ढूंढता कहाँ है बाहर। इसी प्रकार जो मनमुख लोग हैं वो बाहर ढूंढते फिरते हैं, बाहर टोले सब कुछ घर में है, बाहर नाही, बाहर टोले सो भर्म भुलाही। इसलिए कहते हैं भाई अमृत नाम सदा मन मीठा, वृद्धा शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो मांझा दुध, बहुत कुछ है। कहते शहद है, दुध है, शक्कर है, खंड है, माख्यो मांझा दुध, सबे वस्तु मिठिया। ये कहते सारी वस्तु मिठी है कि नहीं? खंड भी है, शक्कर भी है, शहद भी है, सबे वस्तु मिठिया, परंतु रब ना पूजन दुध, उस नाम के बराबर नहीं, परमात्मा के नाम के बराबर नहीं। अमृत नाम सदा मन मीठा, सबदे पावे कोई। इस शब्द के द्वारा उस अमृत नाम को, उस सिद्धांत को कोई बिरला पा सकता है।
दात दात रखी हाथ अपने, जिस भाव तिस देई।
जो अमृत नाम रूपी दात है ना, ये दात है, दात रखी हाथ अपने, उस प्रभु ने है जो दात है ना उसके अपने हाथ में है। दात है, दात रखी हाथ अपने, ये जो दात है ना नाम की, अमृत की, भक्ति की, ज्ञान की, उस प्रभु के हाथ में है। दात है, दात रखी, बाकी संसारिक वस्तुएं तो आपके पास हैं, सभी आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो जो आत्मिक आनंद है ना वो दाते के हाथ में है, यानी वो जो दाता है, मालिक है, गुरु है ना, उसके पास है। उसके पास जब जाते हैं तो युक्ति बता देते हैं, तो आपके अंदर भी है। गुरु के हाथ क्या है? उसका तरीका, उसकी युक्ति है। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भाव है तिस देई। जो उसको भा जाता है, उसकी आज्ञा में चलता है, गुरु की सेवा में रत हो जाता है, तिस देई, उसको और प्रभु मालिक उस दात को दे देता है।
नानक नाम रते सुख पाया, नरक जापे से।
नानक नाम रते, अब समाप्ति करते हैं महाराज जी, तो कहते हैं कि नाम रते, जो नाम में रत हो जाते हैं ना, नाम के साथ जिनकी प्रीति हो जाती है, भक्ति प्रेम के साथ जो भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, स्मरण करते हैं, वो सुख पाया। नाम के साथ प्रेम करने वाले, नाम के साथ मग्न होने वाले सुख पाया। जो नानक नाम रखते, जो उस परमात्मा के नाम के पुजारी हैं, नाम का स्मरण निर्जल होकर के करते हैं, सुख पाया, उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। दरगाह जापै से, दरगाह जापै से। वैसे जो नाम अभ्यासी है उनको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, जब वो इस पांच भौतिक शरीर का त्याग करते हैं तो दरगाह जापै उनको उस परमात्मा की जो दरगाह है ना जाप है, जाने जाते हैं, उनकी वहां पूजा होती है, दरगाह। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚ ਦੇ ਐਸੇ ਜੋ ਹੋਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਾਹ ਜਾਪੇ ਉਨਕੇ ਦਰਗਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਾਣੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਕਾ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਸਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਕਤੀ ਹਮ ਜੈਸੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੋ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਕਾ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਰਸ ਭਕਤੀ ਕਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮਾਰਾ ਲੋਕ ਅਰ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰ ਸਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈ ਭੂਲ ਕੀ ਛਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਏਵਂ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਆਜ ਕਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਪਾਵਨਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ
ਦਾਤ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਤਿਸ ਦੇਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਰਗਾਹ ਜਾਪੈ ਸੇਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ